वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची लाहौर इस्लामाबाद भालपुर पिशावर सियालकोट दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक दो सफर अल मुज़फ़र 1443 हिजरी सितंबर की 10 तारीख सन 2021। आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ, नाम है मेरा दिल प्रोग्राम समराइज में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक, लेकिन प्रोग्राम करेगा आपको एंटरटेन ऑल द वे टिल 11 o'clock इन द मॉर्निंग। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर दिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक है 7:15 बजे का, इसको सुनते हैं। मैं खास सिर्फ 1.25 मिनट का है ये ब्रेक, यानी बस यूं गए और वापस आए और फिर बाकी बातें बाद में। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। ऑलराइट, वेलकम बैक। इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, यानी आप प्रोग्राम में अगर हिस्सा डालना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @adil_azhar। Alright, so it's a cloudy morning here in Karachi. आपको पता है कल रात कराची में कल शाम जो है ना वो एक बार फिर से बारिश हुई, और वैसे तो दिन काफी निस्बतन गर्म था और ह्यूमिड भी था, लेकिन फिर so I mean it's kind of raining every day here, which is quite nice actually. So जैसे कि मैं कल भी बात कर रहा था कि वो जो जुलाई और अगस्त की में कम बारिशें हुई थी, तो वो सीजन की जो बारिश का सिलसिला है वो अभी ऑलमोस्ट पूरा हो रहा है। सो दैट्स वेरी नाइस। लाहौर का मौसम भी सुना है जी, इसमें बहुत अच्छा है। मेरे पास कुछ तस्वीरें भी आई हुई हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स भी मेरे पास चल रहे हैं, और आतिफ इकबाल साहब कहते हैं आज कल तो लाहौर और कराची के वेदर का मुकाबला चल रहा है, क्रेजी लाहौर वेदर। ऑलराइट, क्रेजी बिल्कुल। एच मिस्टर सिद्दीकी ओके, उन्होंने भी इस वक्त लाहौर के मौसम की वीडियो, आसमान की एक वीडियो बना के भेजी है ट्विटर पे मुझे, एंड गॉट टू से इट लुक्स प्रीटी ऑसम। एंड या चलें बाकी मैसेजेस पे भी नजर डालते हैं जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सो आई कीप स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन, एंड वेयर डू आई स्टार्ट, आई स्टार्ट विद द I don't know, man. Seriously. अरे खिलजी साहब का पहला मैसेज आया था, ये बात मुझे इसी पे हैरानी हो रही थी। खिलजी साहब का पहला मैसेज है, जबरदस्त सर, वेलकम टू द शो सर। लगता है पिशावर में भी जो है वो मौसम काफी खूबसूरत हुआ हुआ है, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग सर। एंड यप बिल्कुल जी, हाजिरी लगा दी आपकी। नजम साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। आसिफ मंसूर साहब कहते हैं हर्ड लास्ट नाइट दैट आफ्टर मीटिंग विद ट्रेडर्स अनिल कपूर अलाउड शॉर्ट शॉप to open on Friday. Anything from new? बिल्कुल जी, ये खबर तो कंफर्म हो गई है, बल्कि कराची के एक बहुत बड़े मॉल की जानिब से मेरे पास कल SMS भी आया, I must be on their SMS list, जिसमें उन्होंने बताया है कि अब से ये मॉल जो है वो फ्राइडे को भी खुलेगा सुबह 10 से रात 10 बजे तक। तो what they have done is that they have extended the timings of shop. अच्छा बड़ी मजेदार बात है, यानी सिंध के चीफ मिनिस्टर जनाब अनिल कपूर साहब के साथ जो मुलाकात की है, यानी भाई SOPs के हवाले से डिसीशन तो मेडिकल से वाबस्ता लोगों को लेने चाहिए, ये बिजनेसमैन के साथ मीटिंग के बाद ये डिसीजंस क्यों लिए जा रहे हैं, तो बात ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। बहरहाल पाकिस्तान का दौरा करके अंदाजा ये हुआ कि कराची में जो है वो गालबन रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा हैं कंपेयर टू मैनी अदर प्लेसेस, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी उसमें तब्दीली जरूर आई है। 10 बजे तक जो है वो दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई है, और फ्राइडे को वो जो नागा था बिजनेस का उसको भी जो है वो अब खत्म कर दिया गया है। तो आसिफ साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है। डॉक्टर जीशान बेग ने मेरे साथ ये खबर शेयर की है, जो कि कल मैंने वैसे रीट्वीट भी की थी, विच वाज अबाउट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ 306 किलोमीटर हैदराबाद सखर मोटरवे, $191.4 billion, यानी $1.1 अरब की लागत से जो है ये मोटरवे बनेगी। डेफिनेटली देयर विल बी कॉस्ट ओवर रन्स एंड ऑल, सो लगा लें तकरीबन $1.25 billion। सो जो ट्रांस पाकिस्तान सड़कों का जाल है इस वक्त, उसकी जो आई वुड से जो वीकेस्ट लिंक है, यानी कमजोर तरीन कड़ी है पाकिस्तान में सड़कों के नेटवर्क पे, बिटवीन मेजर सिटीज अगर हम बात करें, सो इट इज दैट नेशनल हाईवे बिटवीन हैदराबाद एंड सखर। सो अगले 3 साल में ये कहते हैं दैट दिस हाईवे, अब आई एम अज्यूमिंग दैट्स गोइंग टू बी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड का मतलब ये कि स्क्रैच से पैरेलल चलेगी या कोई और रूट जो है लिया जाएगा, जैसा कि बाकी मोटरवेज एक्सेप्ट फॉर M9 में लिया गया है। M9 वॉज अ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड मतलब एग्जिस्टिंग एक हाईवे को ही अपग्रेड किया गया है, कोशिश की गई है, एक फेल्ड कोशिश की गई है उसको मोटरवे स्टैंडर्ड पे लाने की. अब उसमें मैं काफी ज्यादा रोना धोना कर चुका हूँ, मजीद रोना धोना नहीं करूंगा. बट बहरहाल एज फार एज द कम्युनिकेशन पार्ट इज कंसर्न, दिस इज अ गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं जी. आसिम मंसूर साहब तस्वीर भेजी है, टुडे इज सनराइज. क्या बात है, आज का सनराइज वाकई खूबसूरत. अच्छा, क्योंकि हवा चल रही थी सुबह थोड़ी सी, इट इज ह्यूमिड, बट हवा चल रही है. जिसके अलावा मोहम्मद माजिद साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी फैमिली नाश्ता करते हुए माशाल्लाह जी जबरदस्त, और अल्लाह ताला आपकी फैमिली को खुश रखे, आमीन. अब्दुल रऊफ कहते हैं, सर ये वेरीफाइड और अनवेरीफाइड ट्विटर अकाउंट में क्या फर्क है? भाई वेरीफाइड अकाउंट में वो ब्लू कलर का टिक लगा हुआ होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि कन्फर्म्ड ये आपका अकाउंट है. ठीक है जी, कन्फर्म. मसलन मैं अब देखें, हो सकता है जी मेरी शोहरत से जल के जो है वो कुछ जाली अदील अजहर के फेक अकाउंट बनने शुरू हो जाएं और वो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दें. तो ट्विटर ने और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या करते हैं कि आपको उनका एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है. अगर आप उस वेरिफिकेशन प्रोसेस से अपने आप को गुजारें और उनको लगता है कि वाकई आप इस काबिल हैं कि आपको वेरीफाई किया जाए, मैं कुछ किया हो ना जिंदगी में आपने, ऐसी थोड़ी है हम शफीक भाई को बना लें, वेरीफाई करते हैं उनका अकाउंट के भाई ये शफीक भाई हैं, इनकी जो है ना वो एक ईंटों का भट्टा है. तो वो वाली गेम नहीं है. कोई जर्नलिस्ट होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, नॉन पीपल जिन्होंने कुछ काम किया हो, फिलेंट्रोपिस्ट, पॉलिटिशियंस या ऑफ कोर्स एक्टर्स एक्ट्रेसेस, सो उनके अकाउंट वेरीफाई किए जाते हैं. ठीक है रऊफ भाई, हो गया ना आंसर. चलें जी, पीर जहीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, लिसन टू द शो, थैंक यू. राशिद साहब, गुल मुस्तफा, असद, पानी का बुलबुला, ओ यार टुडे इज फ्राइडे, पानी का बुलबुला, बिल्कुल काफी दिन हो गया, मैं तो भूल ही गया था, बिल्कुल थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग सर. फहीम अली खान साहब कहते हैं, ब्रो आई हर्ड पीपल हु आर कमिंग टू सऊदी अरेबिया आर बीइंग गिविंग बूस्टर शॉट्स स्पेशली दोज हु हैव रिसीव्ड चाइनीज वैक्सीन, डोंट यू थिंक इज अनफेयर विद देम? अनफेयर विद देम, दोज हु आर गोइंग टू सऊदी अरेबिया, नॉट कमिंग टू सऊदी अरेबिया, टाइप हो गया, आपके साथ कोई मसला नहीं है. बिल्कुल जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त रियाजुर रहमान साहब, हमारे रेगुलर लिसनर जो रियाद में प्रोग्राम सुनते हैं, रियाज साहब रियाज में प्रोग्राम सुनते हैं हमारा, उन्होंने एक लिंक भी भेजा है कि जो पाकिस्तानी उमरा करने जाना चाहते हैं सऊदी अरेबिया, उनको जो है ये बूस्टर शॉट लगाना पड़ेगा. सऊदी अरब आपको पता है कि चाइनीज वैक्सीन को रिकग्नाइज नहीं करता. सो अनफेयर की क्या बात है इसमें फहीम? हु इज फोर्सिंग यू टू ट्रैवल यार? उमरा है, नफिल इबादत है, मत जाएं अगर आपको वैक्सीन नहीं लगवानी है. इसमें अनफेयरनेस वाली क्या बात है दोस्त, मुझे ये बताओ ना जरा. पीर जहीर साहब थैंक यू, नासिर भाई, हुमायूं बेग एंड आबिद यासीन, चलें जी माशाल्लाह सारे कॉलीग्स आपके कवर हो गए हैं, दैट इज ग्रेट. एंड देन वी हैव गॉट डॉक्टर शैला कहती हैं, लाहौर का वेदर तबाही हुआ है, जबरदस्त, टुडे इज अलीशबास 14th बर्थडे, प्लीज विश हर. ऑलराइट अलीशबा, आई होप यू आर लिसनिंग वन, एंड देखें आपकी बर्थडे पे कितना जबरदस्त माहौल जो है वो सेट किया हुआ है, कितना अच्छा मौसम जो है वो रखा गया है. सो एंजॉय योर डे एंड विश, और द वीकेंड भी तो है, सो कूल मैन. मतलब आई डोंट नो आजकल के बच्चों के लिए वीकेंड की जो है वो कोई इंपॉर्टेंस है भी या नहीं. जैसे हम छोटे थे व्हेन वी वर इन स्कूल, जुम्मे की जुम्मा छुट्टी हुआ करती थी, माय फर्स्ट ईयर में आके जो है ना वो हॉलीडे संडे की हो गई थी, लेकिन वाह क्या दिन था. चलें जी, 27 past 7 इज द टाइम. नजम साहब थैंक यू, तहसीन अमजद बहुत शुक्रिया कहते हैं, ड्यू टू इंटरनेट डिसरप्शन कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द शो, हाउ इज द वेदर इन द सिटी ऑफ लाइट दीस डेज, मैंने इस पे काफी सैर हासिल गुफ्तगू कर चुका हूँ. यूसुफ नवाब कहते हैं, अदाब अर्ज है, थैंक यू. अताउर रहमान साहब कहते हैं, वेरी ह्यूमिड मॉर्निंग इन कराची, इट्स ब्यूटिफुली ग्रीन गिवन स्टनिंग लुक थैंक्स टू करंट रेनी वेदर बट डिफिकल्ट फॉर एक्सरसाइज ड्यू टू इंक्रीज ह्यूमिडिटी नो विंड. ओह या बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस ह्यूमिडिटी के बावजूद जो इसकी काफी ज्यादा ह्यूमिड है वेदर, पांचों दिन मुझे लग रहा था मैं एक दिन मिस करूंगा अपनी रनिंग, बिकॉज मेरे 15 दिन से आए हैं, आखिरी दिन मैं लाहौर में भागा था मैं, और उसके बाद फिर बस मैं सोता रहता था सुबह. सो बस अल्लाह का शुक्र है, मुझे लग रहा था एक दिन मैं नागा जरूर करूंगा अपने मॉर्निंग रूटीन का, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी और पाँचों दिन गेम ऑन हो गई. पहले 3 दिन तो जो टांगों में दर्द हुआ ना उसमें बड़ा मजा आया, बड़ा मजेदार सा ये दर्द होता है. थैंक यू सो मच रियाजुर रहमान साहब, आपका ट्वीट मैंने रीट्वीट कर दिया है. सो दोस्त पाकिस्तानीज हु प्लानिंग टू ट्रैवल टू अल ममलिकत अल अरबिया सऊदी, वहाँ पे उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, एक मुकीम नामी एप्लीकेशन है, या वैसे आप ज्यादातर ममालिक ने ऐसे ही कर दिया है ऐप पे रजिस्ट्रेशन. अभी जैसे कैनेडा का भी मुझे पता है, देयर इज एन ऐप कॉल्ड अराइव कैन. ओके सो हमारी वालदा पर तोल रही हैं एक्चुअली जाने के लिए, तो जरा ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वक्त इकट्ठी कर रहा हूँ. ओके अताउर रहमान साहब कहते हैं, ट्यून इन इज नॉट वर्किंग फॉर मी, कैन एनीवन अपडेट रिगार्डिंग ट्यून इन, इज जस्ट मी और द ओवरऑल प्रॉब्लम, सो यू गाइस कैन कंफर्म व्हाट्स द सीन. साद नवीद कहते हैं रमीज राजा ने मुल्की मफवाद को देखकर ऐसी टीम मुंतखब की ताकि आइंदा कोई वर्ल्ड कप जीत कर मुल्क का वजीर आजम ना बने. राइट, ठीक है जी. सलमान सलीम साहब कहते हैं मॉर्निंग वॉक विद सच अ लवली वेदर इज अ ट्रू जॉय. मतलब खूबसूरत पार्क है ये, तो मुझे F9 पार्क लग रहा है ये. ऐसा ही है अगर मैं गलती पर ना हूँ. ये कौन सा पार्क? नहीं, लाहौर है, इस्लामाबाद है. एक सेकेंड. एनीवे, आपने अपने तारुफ में लिखा हुआ नहीं है कौन सा शहर है. एंट्रेंस से मुझे ये F9 पार्क लगा. आई मे बी रॉन्ग, बट व्हिचएवर पार्क दिस इज, सलमान, दिस लुक्स ब्यूटीफुल. ऑलराइट, दैट्स ग्रेट. वन मैन आर्मी, थैंक यू. एंड देन वी हैव गॉट, क्या सीन है जी. जीशान बेग साहब का मैसेज आ गया, कहते हैं अफगान टीम का नया कप्तान कौन होगा. अफगान टीम का तो पता है आपको, कप्तान जो है उन्होंने ये स्टेप डाउन. राशिद खान ने कहा है कि ये मुझसे पूछे बगैर मुझको टीम में शामिल कर लिया गया. वैसे हैरत की बात है, आई एम श्योर राशिद खान मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर. नो कॉन्ट्रैक्टेड, जब आप, मुझे नहीं पता अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है. वैसे मैं, अगर आपको याद हो, जिस वक्त तालिबान व्हेन दे टुक ओवर काबुल 15 अगस्त को, मैंने उसी वक्त इस शक का इजहार किया था दैट ये बंदा मुझे स्लिप होता हुआ नजर आ रहा है. आई मीन ही वॉज प्लेइंग देयर इन द वाइटैलिटी, वो जो हंड्रेड्स वाली क्रिकेट में खेल रहा था ये. और मैंने उस वक्त इस शक का इजहार किया था कि ये हो सकता है कि ये शायद अब अफगानिस्तान के लिए ना खेले. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मे बी वी कुड सी हिम प्लेइंग फॉर इंडिया इन द कमिंग डेज. होने को तो कुछ भी हो सकता है ना सर. ऑलराइट, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. बाकी मैसेजेस आपके हम थोड़ी देर में शामिल करते हैं. मजीद इंटरनेशनल खबरें भी हम जाहिर है प्रोग्राम में शामिल करेंगे. जो बाइडन को मैं आज सुन रहा था सुबह, बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे. और गुस्से में इसलिए थे कि वो लोग जो वैक्सीन नहीं लगा रहे उनके खिलाफ काफी सख्त अल्फाज जो हैं वो उन्होंने जैसे कहते हैं कि इस्तेमाल किए हैं. और इसके अलावा, अरे हाँ यार, अभी अभी आपको बताया चलें, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ जो ये आई है वो ये. रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट दिस यंग कैनेडियन टेनिस प्लेयर लेला फर्नांडिस. और लेला फर्नांडिस के हवाले से न्यूज़ ये है दैट शी हैज जस्ट बीटन अरीना सबालेंका टू रीच द फाइनल ऑफ द US ओपन. शी इज 19 ईयर ओल्ड एंड शी इज इन टू द फाइनल ऑफ अ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट. दैट इज pretty awesome. And there is every probability that she could be facing another teenager from UK, another teenager, but she's from UK. There's this one Canadian and there could be one Briton there as well. Emma Raducanu, that's the name. So she could be there. So very interesting development there. So काफी सारे young stars हम देख रहे हैं इस वक्त खवातीन के टेनिस में. And that's pretty cool. ये चलते हैं आपको अभी एक ब्रेक की जाने, उसके बाद पानी का बुलबुला. Don't go anywhere and keep listening. All right, everything bubble of water. Hope you guys are doing fine. And good morning, दोस्तों ने प्रोग्राम अभी tune in किया. पीर साहब, you are most welcome. रजम साहब, thank you so much for sharing this news from Nadra. और कहते ही हैं कि जी नादरा की जानिब से बैंकिंग सिस्टम के लिए इनकलाबी सहूलत. बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं. अच्छा, ये नादरा ने ना कल रात को तकरीबन कोई 8:30 बजे कोई एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए हैं. थ्रेट है पूरा नादरा के. आपको पता है कि नए अब नए जो है ना उनके हेड आ गए हैं. और वो अच्छे, वो जरा फॉरवर्ड लुकिंग आदमी. उनकी मुलाकात भी हुई डॉक्टर साहब से, डॉक्टर रजा भाकर की मैं बात कर रहा हूँ. कहते हैं जी घर बैठे अंगूठों के निशान की तस्दीक करें और अपनी बैंकिंग सहूलियात इस्तेमाल करें. नादरा ने शनाख्ती कार्ड और मोबाइल कैमरे के जरिए उंगलियों के निशानात के हुसूल और उनकी तस्दीक में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बाद इसी टेक्नोलॉजी को बरोएकार लाते हुए बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए कॉन्टेक्ट लेस बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत मुतारिफ करा दी है. अच्छा जी, जबरदस्त. आपने स्मार्टफोन मोबाइल कैमरे के जरिए सार्फिन घर बैठे उंगलियों के निशानात हासिल किए जा सकते हैं और उनकी तस्दीक भी की जा सकती है. ठीक हो गया जी, गुड हो गया. चलें, नादरा की भी पार्टी है वैसे यार. दे मेक अ लॉट ऑफ मनी, सीरियसली. आई मीन, मैं तो कहता हूँ उसको पब्लिकली लिस्ट करा के नादरा को काफ़ी गेम की जा सकती है. एनीवे, चलें जी, कोई बात नहीं. नहीं, ये काफ़ी सीक्रेट एक इदारा है और इसको पब्लिकली लिस्ट ना करें, इसको सरकार के कंट्रोल में रहने दें. ये पैसा बनाए नादरा, बिल्कुल करे यार. लेकिन कभी कभार मुझे लगता है कि नादरा जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा पैसे बना लेता है. और मसलन यही ना, कोविड के सर्टिफिकेट इशुरेंस के लिए क्यों पैसे दूं यार मैं? व्हाई शुड आई डू दैट यार? कम ऑन मैन, सीरियसली. चलो 10-12 रुपए चलती है बात यार. 100 रुपीज़ कितने, 100 ले रहे हैं ना, मैं खास 100-200 ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं? इट्स अ लॉट ऑफ मनी वी आर टॉकिंग अबाउट यार. कल ने जरा सिंपल कैलकुलेशन कर लें, आपको अंदाजा होगा. कि आप कितने बड़े अमाउंट की बात कर रहे हैं. ऑलराइट, ग्रेट. इसके अलावा इमादुल हक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, एक्सीलेंट मॉर्निंग इन लाहौर विद जबरदस्त बारिश, दैट इज ग्रेट. फहीम अली खान कहते हैं दो शॉट्स ले चुकने के बावजूद सऊदी गवर्नमेंट चाइनीज वैक्सीन को रिकग्नाइज नहीं कर रही है, अब तीसरा शॉट लगा रहे हैं, अजीब जबरदस्ती है. इसके बावजूद क्या गारंटी है कोरोना तीसरे शॉट के बाद नहीं होगा? खुद सऊदी किंग ने एक भी शॉट नहीं लगवाई होगी. अबे यार फहीम भाई क्या है यार, मैं सीरियसली यार, आई मीन बस ऐसे बस बहस करनी है मुझे, मैं करूंगा बहस यार सीरियसली. अच्छा सऊदी अरब में इस वक्त डिफेक्टो कौन है यार बादशाह? एमबीएस, तस्वीर नहीं देखी आपने एमबीएस के? उसने टी शर्ट पहन के आया था और अपने वो लगा रहा था वैक्सीन, देखे थे बाइसेप्स आपने उसके? भाई पूरी वर्जिश करता है यार, अभी क्यों नहीं लगवाई होगी उसने वैक्सीन यार? एंड सेकेंडली यार, यार हर मुल्क की अपनी मर्जी है, मैं जो वैक्सीन अप्रूव करूँ मेरी मर्जी है. भाई मैं चाइनीज वैक्सीन से मुझे कम्फर्ट नहीं आ रहा, आपको मेरे मुल्क आना है तो आप ये वाली वैक्सीन लगवा कर आए, वरना ना आए यार. भाई या तो फिर हम तो जो नेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है जो कि पहली जंग अजीम की एक पैदावार है, हम तो उसके खिलाफ ही हो जाए ना. सरहदें होनी ही नहीं चाहिए, सही है, वही इर्तुरुल वाला होना चाहिए गेम. इर्तुरुल वहां से उठा, मैं एंतोलिया से उठ के मैं आ गया अलेपो की सरकार में, वो वाली गेम कर लेते हैं. अब जब आप बॉर्डर्स करेंगे तो फिर तो मुल्क अपनी पाबंदियां लगाएंगे ना यार. वरना मैं अगर आपसे अभी पूछ लू ना कि अफगान रेफ्यूजीज को ले आए ना पाकिस्तान, वो जो पाकिस्तान का लिबरल तबका अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद और लाहौर की बेहतरीन टॉप सोसाइटीज में रहने वाले आर्ग्यू कर रहे हैं कि कराची में लाके अफगान मुहाजरीन को लाके बसाया जाए, तो उनको आने दें फिर. आई एम श्योर आप उसको, आप उससे डिसएग्री करेंगे ना. मेरे ख्याल से कराची में रहने वाला सिवाय चंद एक इंतहाई लिबरल लेफ्ट विंग लोगों के अलावा, आई थिंक ये अमार जान वगैरह कराची में ही रहते हैं शायद इनके, या हमारे वो जो इलेक्शन में भी खड़े होते हैं वो भी लिबरल आदमी जिब्रान साहब, उनके अलावा चंद एक के अलावा कोई कराची वाला अलाउ ही नहीं कर सकता कि अफगानियों को लाके रहा जाए. तो यार जब आप बॉर्डर्स बनाएंगे तो मुल्क अपने कवानीन बनाएंगे, आपको जाना है तो आप जाएं, और नहीं जाना तो नहीं जाएं. अच्छा जी चलें ठीक हो गया. 400 रुपये लेते हैं एक वैक्सीन कार्ड के. 400 रुपये कौन लेता है, नादरा वाले 400 रुपये लेते हैं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया यार. एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है अदनान खोकर, थैंक यू सो मच, आपने इस्लामाबाद में कुछ नाश्तों के हवाले से बात की F10 के हवाले से. व्हेन यू कम टू F10 ऑफिस प्लीज हैव ज्यादा होटल पराठा एंड पंजाब समोसा सेंटर नाश्ता, 2 पूरीज, हलवा चूसी, ये क्या होता है? अच्छा आलू भुजिया एंड अचार फॉर $70 यार, 70 रुपये में तो ये खाते हुए शक हुआ है वैसे क्या खिला रहा है बंदा, लेकिन खैर चले गोश्त नहीं है तब तक ठीक है, समोसा है. एनीवे चलो आई गॉट इट मैन, थैंक यू सो मच अपना अदनान. नेक्स्ट टाइम हम ये ज्यादा है या जद्दा होटल है ये कंफर्म कर देगा, नेक्स्ट टाइम हम वहाँ पे कर लेंगे नाश्ता. शाहीन ताहिर ने भी जो है ना वो अपना हक अदा किया है इस वक्त लाहौर में होने का, एक खूबसूरत सी तस्वीर भेज कर, और ब्यूटिफुल वेदर देयर विदाउट डाउट. उजैर कहते हैं स्कूल और कॉलेजेस कब खुल जाएंगे पेशावर में? यार ये तो हमें झगड़ा साहब से पूछना पड़ेगा, मेरा पेशावर केपी गवर्नमेंट से अभी फिलहाल कोई ताल्लुक है नहीं, इसलिए बताना जरा मुश्किल है. ओके जी, इसके अलावा डॉक्टर शैला कहती हैं कि भाई ये ट्यून इन से जो है ना लोग जान छुड़ाएं, और समा FM लाइव इज ऑल्सो गोइंग फाइन, तो आप उसको भी जो है ना वो सुन सकते हैं. चलो तो यार मैं भी थोड़ी देर पहले टेनिस के हवाले से बात कर रहा था, ठीक है गाइस. एंड टेनिस में मैंने आपको बताया था ये दो टीनएजर्स का मैं जिक्र कर रहा था, एक तो उसमें फाइनल में पहुंच गई है ना लेला फर्नांडिस, और लेला फर्नांडिस का मैंने आपको बताया था कि इनके जो वालिद साहब हैं उनका ताल्लुक जो है वो एक्वाडोर से है, और इनकी जो वालदा हैं उनका ताल्लुक जो है वो फिलिपीन से है, और ये खुद जो है ये पैदा हुई हैं कनाडा में. सो इनका जो है वो अजीब सिचुएशन इस वक्त जो है ना वो मल्टी एथनिक किस्म की कहानी चल रही है. फिर ये जो मैंने दूसरी एक ब्रिटिश प्लेयर का नाम लिया था जिनका नाम एमा रेडुकानू है, ओके नाम से ही काफ़ी मुनफरद है, जिससे नाम से लग रहा है कि ये तो ब्रिटिश हो ही नहीं सकती ना, रेडुकानू का नाम से वैसे ये रोमेनियन लग रही हैं. इनके अच्छा इनकी भी कहानी सुने ना, ये पैदा हुई हैं ऑन्टारियो, टोरंटो ऑन्टारियो में. ऑलराइट, इनके जो वालिद साहब हैं वो रोमेनिया के हैं, और इनकी जो वालदा हैं वो बेसिकली शी इज़ फ्रॉम शंघाई चाइना, and she was born in Toronto and then she moved to Britain and now she has got the British citizenship. Man, this is some complicated thing. Abhi wo Naomi Osaka bhi yaad hai na, Japani and Abbu jo hain wo unke Abbu jo hain wo Haiti ke hain, राइट, और वालदा जो है वो जापानीज है. सो मैन दिस मल्टी एथनिक थिंग इन टेनिस, दैट्स प्रीटी ऑसम. ऑलराइट, दैट्स ग्रेट. इसके अलावा युसरा उस्मानी कहती हैं, तालिबान हैव बैन्ड वुमेन फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट और एनी स्पोर्ट, हाउ हिस्टोरिकल इट इज. अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट वैसे आई नहीं है, देर आर सर्टन इंडिकेशंस दैट दे मे बी थिंकिंग अबाउट इट, बट युसरा आपकी तालिबान से इससे कोई बेहतर एक्सपेक्टेशंस थी तो आप मुझे जरा बता दीजिए. इसके अलावा डॉक्टर मोहसिन फरीद कहते हैं, अदील भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर, लवली वेदर हेयर, दैट इज सो कूल एंड हैवी रेन इन लाहौर. तारिक जमशेद साहब ने खूबसूरत तस्वीर की है, भेजी है, लेकिन इन बॉक्स की है मुझे, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकूंगा. प्रीटी कूल थिंग. ऑलराइट, फैसल मुकीत साहब का मैसेज आया है, वो कहते हैं आई एम हेडिंग टू नगर पार्कर थर ओवर दिस वीकेंड विद एक्सटेंडेड फैमिली, हर्ड इट्स रियली ब्यूटिफुल इन मॉनसून, लेट्स चेक आउट द ब्यूटी ऑफ सिंध. यस, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड. इनफैक्ट आप कराची से बाहर निकलते ही आपको ये इंडिकेशन होगी कि बारिश का जो है वो एक इम्पैक्ट होता है सिंध में, बिकॉज ये जो कराची टू हैदराबाद तो पूरा बंजर एरिया है. सो आपके पास बेसिकली दो रूट्स होते हैं, आप या तो नॉर्थ निकल सकते हैं या फिर आप ईस्ट निकल सकते हैं. तो हमारे जो दोस्त फैसल मुकीस साहब हैं ये ईस्ट ट्रैवल कर रहे हैं टूवर्ड्स नगर पार्कर एंड खोकरो पार नगर पार्कर. आपको पता है ये वो बॉर्डर चेक पोस्ट है जो अभी तो फिलहाल फंक्शनल नहीं है. इंडिया पाकिस्तान के अच्छे हालात के दौर में यहाँ से एक ट्रेन गुजरा करती थी जो कि यहाँ से कराची से राजस्थान जाया करती थी, एंड इट वॉज वेरी कन्वीनियंट बिकॉज वी नो दैट देर इज़ अ लार्ज हिंदू पॉपुलेशन, स्पेशली अभी मिट्टी शहर जाएंगे अगर इनका प्लान हुआ मिट्टी वगैरह जाने का, तो थरपारकर में देर इज अ ह्यूज हिंदू पॉपुलेशन दैट लिव्स, और उनके काफ़ी सारे रिश्तेदार अब वो सिंधी भी हैं, मारवाड़ी भी हैं जो कि उस साइड ऑफ द बॉर्डर पर रहते हैं, तो उनके लिए इट बिकेम वेरी कन्वीनियंट. बट येस, इट इज़ वेरी ग्रीन एंड आई होप आप बारिश भी एक्सपीरियंस करें. वहाँ पर एक माउंटेन रेंज है कॉल्ड कारुंजर, तो करुंजर जो है वहाँ पे तो बाकायदा आपको हल्के तो कुछ चश्मे वश्मे भी या झरने भी बहते हुए, झरने कहूँगा चश्मा तो नहीं कहूँगा, झरने बहते हुए आपको नजर आए जो रेन वाटर क्रिएट करते हैं. इट लुक्स ब्यूटीफुल. सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव सेफ ट्रैवल. के जिसके अलावा सर अकबर कहते हैं, नाउ वन हैज टू गो टू दुबई एक्सपो 2020 टू डिस्कवर द हिडन ट्रेजर्स ऑफ पाकिस्तान, वंडर हाउ कम दीज रीच दुबई इफ दीज वर हिडन. यू हैव गॉट अ पॉइंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट माई फ्रेंड. ओके जी, इसके अलावा फरूख शाहब साहब कहते हैं, अदील नादरा की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की फी 100 rupees है. अब बिल्कुल 100 rupees, चले 100 rupees तो उसको मल्टीप्लाई कर दें अबाउट द नंबर ऑफ पीपल दैट आर सीकिंग दिस सर्टिफिकेशन. सो इट्स अ प्रीटी बिग नंबर ना सर, कहने का मतलब ये था एक्चुअली मेरा, तो नादरा अच्छे पैसे बनाता है, मस्ट बी अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. गवर्नमेंट अच्छे, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को रिपोर्ट करते हैं, आपको ये भी पता है. सो ठीक हो गया, गुड. अखबार मेरे पास अभी तक आए नहीं, और आज चूंकि फ्राइडे तो इसलिए मुझे कोई खास उम्मीद भी नहीं है अखबार मेरे पास आएंगे. आ गया तो फिर ये बोनस होगा, वरना मुख्तलिफ अखबार की वेबसाइट्स पर नजर डालेंगे. अभी मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूँ, छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद एक गाना भी सुन लेते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट आतिफ, थैंक यू सो मच. एक और पुराने गाने के साथ आतिफ असलम ने जो है वो कोशिश की है, तो ठीक है. ज़ीशान बेग साहब का ट्वीट आया, कहते हैं कितना सबक आमोज गाना है, अपने जमाने का मोटिवेशनल स्पीकर था ये गाना. वैसे वाकई सीरियसली इस गाने में कोई है खास बात है वैसे, मुसर्रत नज़ीर साहिबा, एंड आई थिंक आतिफ हैज हैंडल्ड इट वेल, लेकिन फिर भी इस ओरिजिनल गाने में भी एक खास बात है वैसे. अरे क्या ग्रेसफुल शख्सियत थी खातून की भी, याद है, आई थिंक शी वाज वेयरिंग दैट ब्लैक साड़ी, उसमें सितारे लगे हुए, और उसमें वाह क्या बात है, जबरदस्त, दैट्स ग्रेट. ऑलराइट, सो सिचुएशन क्या है जी. चलें जी, अब मैंने अखबारात की वेबसाइट जो है अपने सामने खोल ली हैं, और देखते हैं जी. नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का शरपसंदों से पूरी ताकत से निमटने का फैसला, ये express.pk ने आज अपनी सबसे बड़ी खबर बनाई हुई है. लेकिन एक खबर जिसको अखबारात नहीं बल्कि इनकी वेबसाइट्स ने प्रोमिनेंस के साथ जो है वो शाया किया है, वो ये कि अब से कुछ हफ्तों पहले ये उम्मीद जागी थी कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज आने को हैं, जस्टिस आयशा मलिक, जिनका ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट से है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस आयशा मलिक के नाम पर इत्तेफाक ना हो सका, और कहते ये हैं कि जी इनकी तैनाती के हक और मुखालफत में 4-4 वोट्स आए, बाकी आप यूट्यूब व्लॉगर्स जो हैं उनको आप सुन सकते हैं जो लीगल मैटर्स को कवर करते हैं कि वो कौन से चार अफराद थे जिन्होंने इन खातून की, जस्टिस आयशा मलिक हु इज बाय द वे अ ग्रेजुएट ऑफ द हार्वर्ड लॉ स्कूल, उनके आने की जो है वो उन्होंने मुखालफत की. ठीक है, एनसीओसी का 24 अजला में तालीमी इदारे मजीद एक हफ्ते बंद रखने का फैसला. ओके, सीआईए के चीफ एक बार फिर से पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं. सीआईए डायरेक्टर डिस्कसेस अफगान सिचुएशन विद आर्मी चीफ एंड डीजी आईएसआई विलियम जोसेफ बर्न्स, इनका नाम है, वो यहां पर आए हैं. और जाहिर है इस वक्त काफ़ी हाई प्रोफाइल लोगों का पाकिस्तान आना जाना लगा हुआ है. ये या तो अच्छी बात हो सकती है या बहुत ही बुरी बात हो सकती है. सो आई रियली होप कि ये अच्छी बात ही साबित हो. सो लेट्स सी. जी इसके अलावा और don.com में भी जी बिल्कुल जस्टिस आयशा मलिक की मुस्कुराती हुई तस्वीर है. बट द न्यूज इज नॉट गुड दैट द जुडिशल कमीशन हैज डिसअप्रूव, बेसिकली इट इज डिवाइडेड. ओके, और क्या खबर है जी. मुंबई गेट्स रेडी टू सेलिब्रेट इट्स बिगेस्ट फेस्टिवल एमिड सर्जिंग केसेस, ये भी लिखना है don.com का. और प्राइम मिनिस्टर इमरान एम्फसाइज़ेस बेटर कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव मेजर्स टू अचीव नेशनल एक्शन प्लान टारगेट. ऑलराइट, इसके अलावा नवाज शरीफ टू रिटर्न टू पाकिस्तान दिस ईयर, बिकम प्राइम मिनिस्टर फॉर द फोर्थ टाइम, पीएमएलएन्स जावेद लतीफ. ऑलराइट जी, तो वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी आएंगे और पाकिस्तान के वजीर आजम भी बनेंगे. चलें, ये आई एम श्योर हमारे जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं उनके लिए बड़ी खुशी की खबर होगी अगर वो जावेद लतीफ पे बिलीव करना चाहते हैं या नहीं. आपको पता है कि पाकिस्तान के कवानीन में बड़े पैमाने पे तब्दीली करनी पड़ेगी अगर नवाज शरीफ साहब को एक बार फिर से वजीर आजम बनाना है. तो कोई तो वजह है कि इतनी इन्वेस्टमेंट. और क्या बात याद आ गई यार. चलें आगे चल के प्रोग्राम में ना हम इग नोबेल प्राइज के हवाले से बात करेंगे. नोबेल प्राइज का तो आपने सुना होगा, इग नोबेल प्राइज भी एक चीज होती है. सो विल टॉक अबाउट दैट. और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च, एक एम्पिरिकल रिसर्च हुई है. सो विल टॉक अबाउट दैट. अभी मियां साहब का मैंने सोचा तो मुझे वो रिसर्च का जो है ना वो याद आ गया. ओके चलें जी, इसके अलावा क्या सीन है. अफगान जर्नलिस्ट टेल ऑफ तालिबान बीटिंग आफ्टर कवरिंग प्रोटेस्ट. दो जर्नलिस्ट की तस्वीरें आई हैं जिनके कमर पे जो है ना काफ़ी लैशेस के निशानात हैं और जिनके बारे में उन्होंने दावा ये किया है कि क्योंकि वो प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे इसलिए तालिबान ने उनको अरेस्ट किया है और उनकी जम के जो है वो पिटाई लगाई है. ठीक हो गया, हकीकत खबर दुरुस्त है या नहीं ये अभी ज़रूरी ये अभी तक कन्फर्म नहीं है. अफगानिस्तान के मामूलात चलाने के लिए पाकिस्तान से लोगों को भेजा जा सकता है, ये कहना है वजीर खजाना का. ये कोई ऐसा डिसीशन नहीं लिया गया है, उन्होंने अपने इस ख्याल का इजहार किया है और ये एक डिस्कशन में या सवाल और जवाब में ये मामला आ गया. तो उन्होंने कहा भाई हुकूमत अगर सोचती है इस हवाले से तो क्यों नहीं किया जा सकता इस चीज़ का. लेकिन याद रहे अभी एक इम्पॉर्टेंट, ज़ाहिर है हमने दो चीज़ें देखी हैं अभी जो हुई हैं अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी हुकूमत को रिकग्निशन मिलने के हवाले से. चीन का तो हमने सुन लिया था कि चीन ने $31 मिलियन की इमदाद भेजी है. और इसके अलावा कतर के हवाले से जो है वो ये बात आई है कि जी कतर ने जो है वो काबुल का इंटरनेशनल हामिद कारजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको बहाल करने में मदद की है. क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि जो तालिबान टेक ओवर हुआ था 15 अगस्त के बाद वहाँ पे जो धमा चौकड़ी मची हुई थी एयरपोर्ट पे, उसके बाद से एयरपोर्ट की फैसिलिटीज को काफ़ी नुकसान हुआ था. सो कतरी गवर्नमेंट गॉट इन्वॉल्व एंड दे गॉट थिंग्स गोइंग. और कल जो है वो पहली कमर्शियल फ़्लाइट एक बार फिर से हामिद कारजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हो गई है. And it was surprising, not so surprisingly, जो कतर एयरवेज का जहाज था जो कि 200 passengers को लेकर, जिसमें Americans भी शामिल थे, Canadians भी शामिल थे, लेकर वो कल रात गए दोहा पहुंच गया. अच्छा जी, इसके अलावा ये भी कन्फर्म हो गया है that रूस के जो सफीर हैं अफगानिस्तान में वो तालिबान गवर्नमेंट की जो इनॉग्रेशन है उसमें शिरकत करेंगे. सो दिस कुड बी द फर्स्ट थ्री पाकिस्तान फोर कंट्रीज मे बी हु वुड रिकग्नाइज द तालिबान, बट लेट्स सी व्हिच इज गोइंग टू बी द फर्स्ट. ओके, बल्दियाती इंतखाबात, वजीर आजम ने मुल्क भर में पार्टी को मुतहरिक करने की हिदायत कर दी है. और इसके अलावा क्या खबर है, सिंध में कुदरती गैस के नए जखायर दरियाफ्त हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है. और एनीथिंग एल्स नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पर हम रुकते हैं बिकॉज टाइम चेक न्यूज हेडलाइंस कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद खेलों की खबरों के साथ. विल टॉक अबाउट द न्यूजीलैंड सीरीज ऑफ कोर्स, न्यूजीलैंड की टीम कल पाकिस्तान आ रही है, खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट हुए और एक खिलाड़ी का कोविड टेस्ट पॉजिटिव भी आ गया है. सो बाकी सब नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है. सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. So we had no headline news today. All right, so there were no Sama FM headline news. I hope what I the news that I shared with you sufficed. But I think Sama ki news वैसे मेरे लिए बड़ी helpful होती हैं. The वो बिल्कुल updated होती हैं ना, like up to the hour generally होती हैं. तो बहरहाल चलें जी. So apologies for that. चलें खेलों के हवाले से बात करते हैं. And खेलों के हवाले से जो है वो हम बात करेंगे राशिद खान के हवाले से. राशिद खान कहते हैं कि जी He's stepping down. Afghanistan team comes. Afghanistan का काफी जिक्र हो रहा है. अच्छा भाई सबसे पहले तो thank you so much. हमारे दो डॉक्टर listeners, डॉक्टर फरा, thank you so much, and डॉक्टर ताबिश, दोनों ने मुझे ये बात बताई कि जी हामिद करजाई इंटरनेशनल का नाम जो है वो तालिबान ने चेंज कर दिया है एंड दे आर कॉलिंग इट काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाउ. सो थैंक यू. इवन दो कल मैं फ्लाइट रडार 24/7 फॉलो कर रहा था, उसमें तो वो अभी भी HKIA लिखा हुआ था, लेकिन खैर चलें जी. आई एम श्योर आप कह रहे हैं तो मस्ट बी स्पॉट ऑन. बाकी क्या सीन है. हाँ तो हम बात कर रहे थे कि जी राशिद खान ने कल ट्वीट किया है, काफ़ी ट्रैक्शन मिला है उनके इस ट्वीट को. उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान की टीम सिलेक्शन के लिए मुझसे कंसल्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से आई एम स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द कैप्टनसी ऑफ द साइड. सो दैट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग टेक. इज दैट रीजन और एक्सक्यूज? खैर एनी वे, हमारे काफी सारे दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान के कप्तान बाबर को टैग कर रहे थे उसमें के सीखे इनसे, सीखो कुछ, सीखो इससे भाई, ये होती है. और अपने क्या कहते हैं, बहरहाल चलें जी ठीक है, इंटरेस्टिंग सिचुएशन. चलें ऑलराइट, नवाज के हवाले से बात करते चलें. मोहम्मद नवाज के हवाले से, नॉट नवाज, अदर नवाज. ही इज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर COVID-19 अहेड ऑफ न्यूजीलैंड सीरीज. सो इसका मतलब ये कि नवाज इज आउट नाउ. और सिचुएशन जो है वो ये हुई है दैट बाकी सारे खिलाड़ी जो हैं दे गॉट टेस्टेड नेगेटिव. और ये टेस्ट जो हैं ये वेंसडे को एडमिनिस्टर किए गए थे. और अब सीन ये हुआ कि ही मे बी एबल टू फीचर इन द T20 सीरीज. आई डोंट नो वेदर ही इज इन द T20 स्क्वाड और नॉट, आई डोंट रिकॉल, बट whatever, I don't think he is. So 10 din ka iska quarantine hoga. He is apparently asymptomatic. Baaki sare khiladi negative rahe to aaj se wo pindi mein apni training ko jo hai wo start kar denge. Yaad rahe ji, New Zealand ki team jo hai wo kal aa rahi hai. They will be landing in Islamabad. Aur sakht security plan banaya gaya hai. बल्कि मैं देखा था डॉक्टर जीशान ने अभी जो है वो इस्लामाबाद का सिक्योरिटी प्लान उसके हवाले से जो खबर है वो भी शेयर की है. और जाहिर है आपको पता है न्यूजीलैंड की टीम एक बहुत तवील इंतज़ार के बाद, एक बहुत तवील वक्फे के बाद पाकिस्तान आ रही है, तो सिक्योरिटी बड़ी टाइट होगी. सो कराची वाले अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं कि जी हमारे पास कोई मैच नहीं हो रहा इसका, ताकि हम जो है ना वो इस ख्वारियत से बच जाएंगे. सो बहरहाल चलें जी. आई मीन कुछ तो गलत होना इस्लामाबाद में, कुछ तो मसला हो आवाम को, नहीं कोई जिंदगी अलग डगर पे चल रही है वहां पे सीरियसली. चले एनीवे, तो ये हो गया सिलसिला. अच्छा तो अब ये है कि न्यूजीलैंड, ठीक है न्यूजीलैंड, ये आप रिमेंबर, आपको मैं हर दफा याद दिलाता रहता हूँ. पहले फेज में द टीम्स विल बी इन रावलपिंडी जहाँ पे ये मैचेस होंगे, और वहाँ पे जो है ODI लेग ऑफ द सीरीज होगा. एंड देन आफ्टर दैट दिस गोइंग टू बी अ T20 लेग जो कि पूरा का पूरा जो है वो लाहौर में होना है. एंड लेट्स होप दैट बाय द टाइम इट स्टार्ट्स वी डोंट हैव दैट स्मॉग इशू देयर इन लाहौर. वरना आपको पता है कि न्यूजीलैंड वाले बड़े ही पुरफजा सा माहौल से, मुल्क से अपने आ रहे हैं, और उनको यहाँ पे आके बेचारों को कोई सांस की दमे की तकलीफ वगैरह जो है वो ना हो जाए. अच्छा न्यूजीलैंड की टीम के अलावा एक और आपको पता है अजीम शख्सियत तशरीफ ला रही हैं पाकिस्तान, और वो हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग में बुरी तरह फेल होने वाले जनाब आसिफ साहब. और आसिफ अली साहब जो हैं, वैसे मेरे ख्याल से उनका भी यही वाला सीन होगा कि खसूसी तैयारे के जरिए वो तशरीफ लाएंगे. बल्कि वो तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नहीं, चकलाला पे वो डायरेक्ट जाके उतरेंगे, जहाँ पे जो है वो रमीज राजा और मोहम्मद वसीम और मजर अरशद जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे. यही लग रहा है मुझे तो. खैर यार सीरियसली समझ में नहीं आ रही है बात, सीन है क्या. लेकिन चलें जी, तो ये हो गई बात पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज के हवाले से. एंड आफ्टर दैट हसन चीमा भी होगा. हसन चीमा वो बड़ा फैन है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाली पूरी लॉबी होगी वहां पे यार. ऑलराइट, सो अच्छा जी, वेस्ट इंडीज ने अपने T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और इस स्क्वाड की जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये दैट सुनील नारायण इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टीम. रवि रामपाल इज बैक इन द वेस्ट इंडियन स्क्वाड. इसके अलावा पोलार्ड जो है, केरन पोलार्ड इज गोइंग टू लीड द स्क्वाड, जिसमें होल्डर शामिल हैं और कॉटरेल शामिल हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. और उसके अलावा और कौन कौन है उनकी टीम में, अकील हुसैन इज देयर, ही विल बी ट्रैवलिंग एज द रिजर्व्स. डेरन ब्रावो, शेल्डन कॉटरेल जो हैं ये भी रिजर्व्स हैं. जेसन होल्डर, दे विल बी ट्रैवलिंग एज रिजर्व्स बाय द वे. बट निकोलस पूरन, फेबियन एलन्स, ड्वेन ब्रावो, रोस्टन चेस, आंद्रे फ्लेचर, क्रिस गेल, हेच मायर, लुइस मैक्वायर, रामपॉल, आंद्रे रसल, लिंडल सिमंस, ओशेन थॉमस एंड हेडन वॉश जूनियर. सो अपने दिन में दिस कैन बी अ वेरी डेंजरस साइड. एंड गाइज, लेट अस ऑल्सो नॉट फॉरगेट, these guys are the reigning champions, right? They've been the world champion for the past what, 5 years now, because uske baad se koi t20 5 saal se zyada ho gaya. Ek yaad hai hamara kitna chota term tha world cup ka, like hum june mein jeete hain aur fir april mein, agle saal april mein wo hasi wala world cup aa gaya tha apna, sahid ajmal wala jo world cup hua tha, west indies wala. 9 mahine 10 mahine mere khayal se hum world champion rahe honge. Wo yahan dekhen yaar, 5.5 saal ho gaye yaar. किस्मत है अपनी अपनी, बट चलें ठीक हो गया जी. बट गुड साइड, नो डाउट अबाउट इट. ऑलराइट जी, इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच जो है वो मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में आज से इसका आगाज हो रहा है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे. रिमेंबर, इंडिया हैज गॉट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू विन दिस सीरीज, इवन इफ दे ड्रॉ दिस टेस्ट मैच. इंडिया 2-1 से सीरीज जीतने में कामयाब हो जाएगा बिकॉज दे आर लीडिंग द सीरीज. एंड वाओ, उसके अलावा बांग्लादेश और न्यूजीलैंड भी एक दूसरे के सामने होंगे. ये मैच ही पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे शुरू हो रहा होगा. और वेल क्या बताएं, बांग्लादेश के बारे में तो जब भी ये सिलसिला हो रहा है मैं तो बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि यार अपने मुल्क में बुला के ये टाइट टाइट टीमों को जो है ना, ये अच्छा इन्होंने जो है ना वो जलील करने का इस वक्त बंदोबस्त किया हुआ है. ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त दी है और उसके अलावा वो न्यूजीलैंड को भी जो है वो इस सीरीज में ऑलरेडी शिकस्त देने में कामयाब हो गए हैं. सो आज लेट्स सी वेदर इट बी 4-1 और 3-2, दैट रिमेन्स टू बी सीन. इसके अलावा एक और भी कोई मैच इंटरनेशनल होने वाला है यार आज, एंड आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे, या सेकंड ओडीआई बेलफास्ट. ठीक है जी, टाइम चेक नहीं, अब नहीं टाइम चेक नहीं, अब कमर्शियल ब्रेक की जानिब ऐसा कहते हैं हम बढ़ जाते हैं. वैसे मेरे पास 1 मिनट है, 1.5 मिनट, जल्दी से कोई मैसेज देख लूँ, आप लोग हम शामिल करते चलें. वी हैव गॉट Khurram Amanullah, he says, you're absolutely right about Nadra making good money from COVID certificate. Talking about money, many wondering PMIK's package of 1.1 billion for Karachi last year. Hope we get a glimpse of it soon. 1.1 billion? It was, pata nahi sir, 1.1 trillion tha mera khayal se package sir. Okay, ji, iske alawa Jahan Zeb Minas, a lot of people have shared me with this thread by Mr. Umar उमरक्ती, जिन्होंने बहुत अच्छा एक थ्रेड बनाया है रिगार्डिंग जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ऑन द सिंगल नेशनल करिकुलम. सो इट्स अ वेरी गुड थ्रेड एंड मैं बल्कि आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप लोग भी इसको पढ़िए, बिकॉज अब तक मैंने आपको यही बताया था कि इट लुक्स लाइक दैट फाइनली समबडी हैज ओपन दीज बुक्स एंड हैज स्टार्टेड टू गो थ्रू दैट, बिकॉज अब तक सिर्फ और सिर्फ जो एतराज़ हो रहा था वो सरवर्क पे हो रहा था. मैं ये तक देख रहा था कि एक कराची के एक मौसूफ़ हैं जो अर्बन प्लानिंग के हवाले से काफ़ी अच्छे ट्वीट्स कर रहे होते हैं, उनको ये इशू हो रहा था कि इन किताबों की जो उनमें जो डिज़ाइन में अलाइनमेंट सही नहीं है. यानी जिस लेवल का इस वक्त क्रिटिसिज्म हो रहा है इन सिंगल नेशनल करिकुलम की किताबों का, यानी आप अगर इख्तलाफ ना भी करते हो तो फिर आप इनको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे. एनीवे चलें जी, फैसल खान साहब जो हैं मरी में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, कहते हैं इट इज द लास्ट डे ऑफ माय टूर हेयर इन मरी एंड वी लिसन टू योर शो फ्रॉम भावलपुर फ्रॉम मंडे. ऑलराइट, इसके अलावा इमरान कुरैशी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, नादरा चार्जेस ₹1,000 फॉर वन पेज ऑफ FRC गोल्ड अर्निंग ऑन डेली बेसिस. यार आई एम प्रीटी श्योर, आई एम एक्चुअली वेरी श्योर नादरा पे जो रिटर्न ऑन एसेट होगा, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई और इदारा, आई मीन जब अभी आपने FRC का जिक्र किया ना, ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सेट जो फैमिली वाला जो सर्टिफिकेट होता है राइट, मैं और भी चीज़ें सोच रहा हूँ ना, बच्चों के स्मार्ट कार्ड बनते हैं, आई मीन व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट स्मार्ट कार्ड. बट जस्ट थिंक अबाउट, चले मैं ओवर हेड्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी डाल दूँ, सरकारी इदारा है तो मेरे ख्याल से तनख्वाहें और पेंशन भी काफ़ी होंगी, बट स्टिल आई मीन दिस इज़ अ इदारा विच इज़ सर्विंग हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि पिछले शायद 20-22 साल में पाकिस्तान में वजूद में आई गई होगी. बट द अमाउंट ऑफ मनी दैट दीज आर मेकिंग मैन, सीरियसली. ऑलराइट, ओके, अभी हम क्या करते हैं, आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. दिस सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और आई एम श्योर बहुत सारे शहरों में स्पेशली लाहौर में इस वक्त, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द सैटेलाइट मैप राइट नाउ, एंड ना सिर्फ लाहौर में इस वक्त अच्छी बारिश हो रही है, सो दीज गाइस कैन रिलेट टू दिस सॉन्ग, बल्कि लाहौर में बारिश का सिलसिला बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब से थोड़ी देर तक जो है वो जारी रहेगा. और आसिम भट्ट साहब ने भी ये मैसेज किया है, लाहौर में मेघा बहुत तेज बरस रहा है. जी हाँ, काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो इस वक्त क्लाउड कवर है ओवर लाहौर एंड एडजॉइनिंग एरियाज, एंड इट लुक्स लाइक दैट इट इज ग्रोइंग, इट इज स्प्रेडिंग. सो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और दुआ ये करेंगे कि ये बारिश बरान रहमत साबित हो. ऑलराइट, कल एक अफसोसनाक खबर सुनी रहीमुल्ला यूसुफ़ज़ई साहब के हवाले से. इट्स नॉट वेरी ऑफन दैट आई इस तरह मैं लोगों के बारे में जो जाने वाले लोग हैं, बिकॉज यार अल्लाह ताला ने कुदरत का कारखाना लगाया है, दुनिया में लोग आते भी रहते हैं और जाते भी रहते हैं, लेकिन नॉट वेरी ऑफन दैट आई टॉक अबाउट पीपल हु हैव लेफ्ट अस, बट रहीमुल्ला यूसुफ़ज़ई साहब का जिक्र ज़रूरी बनता है. बिकॉज मैं, अच्छा, आई विल बी सरप्राइज, अगर आप लोग खबरें देखते हैं पाकिस्तान में तो आपने कभी रहीमुल्ला साहब का जो है वो नाम ना सुना हो. बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि मैं अगर अपनी ज़ाती तौर से बात करूँ तो ये वो उन चंद चेहरों में से हैं कि आप कभी चैनल तब्दील कर रहे हो या कभी चैनल चेंज कर रहे हो और आपको रहीमुल्ला यूसुफ़ज़ई साहब की शक्ल नज़र आ जाया करती थी कहीं पर, तो मैं वहाँ, मेरी आदत थी कि मैं, आई मीन आई डेंट हैव टू फोर्स माई सेल्फ, एक ऑटोमेटिक मेरा रिएक्शन होता था कि वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ, वो रहीमुल्ला यूसुफ़ज़ई साहब कहीं बैठे हुए, क्योंकि बचपन से बीबीसी से वो वाबस्ता रहे, आई थिंक जंग ग्रुप से भी वाबस्ता काफ़ी, यानी बीबीसी में वॉज द फर्स्ट टाइम वन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दैम, जिस ज़माने में बीबीसी का प्रोग्राम सैरबीन, मैं ये मिड टू अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, यानी इतने बचपन से मैं ये सुन रहा हूँ, प्रोग्राम सुन रहा था. अब तो आपको पता है कि बीबीसी की ट्रांसमिशन अब नहीं आया, बीबीसी उर्दू की मैं बात कर रहा हूँ, वो सिलसिला वैसा नहीं रहा जैसे पहले होता था, पूरा उनका फोकस जो है वो डिजिटल साइड पर हो गया. तो सैरबीन में अफगानिस्तान का मसला, बिकॉज आपको पता है मिड 90s में जो तालिबान मूवमेंट थी वो 95-96 जो उनका राइज था, काबुल पे कब्जा करना, नजीबुल्ला का जो हाल हुआ, फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो कबायली इलाकों की सूरत हाल 9/11 के बाद, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में रहीमुल्ला यूसुफ़ज़ई साहब से ज़बरदस्त कोई अथॉरिटी थी मौजूद इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए, और अनबाइस्ड, आई मीन इतना ऑब्जेक्टिव एनालिसिस उनका हुआ करता था यार. यानी आजकल के सहाफती दौर में जहाँ पे हर कोई बड़ा ओपिनियनेटेड है, और अभी मैं और खिलजी साहब एक बड़े मशहूर सहाफ़ी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिनका कल थोड़ी सी डिबेट चली है तैमूर झगड़ा साहब के साथ ट्विटर में. सो वो भी एक सहाफ़ी हैं, और एक तरफ रहीमुल्ला यूसुफ़ज़ई साहब भी एक सहाफ़ी हैं, यानी इतना ऑब्जेक्टिव एनालिसिस उनका हुआ करता था. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो कबायली निज़ाम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो शुमाल मगरबी इलाके में मौजूद है, उसके हवाले से जो उनकी उनकी सोच थी, उनके तो एक जर्नलिस्ट का जो काम होता है ना, यानी एक एनालिस्ट का जो काम होता है कि तमाम बायसेस को साइड पर रख के खबर को उसकी असल फॉर्म में उसके साथ उस पर तज्जिया करना, रहीमुल्ला साहब जो हैं वो इस फन के माहिर थे. और अभी तकरीबन ये कोई पिछले महीने की बात है, मेरे ख्याल से पिछले महीने के आगाज़ की ये बात है, जिस वक्त तालिबान आहिस्ता आहिस्ता इलाके फतह करना शुरू हुए थे, मैंने कामरान खान साहब के प्रोग्राम में उनको आखिरी बार देखा था, आई थिंक इट वॉज बैक इन जुलाई, और विजिबली रहीमुल्ला साहब जो हैं वो काफ़ी जो है वो कमज़ोर नज़र आए, और अंदाज़ा ये हो रहा था कि इनकी तबीयत शदीद नासाज है, आवाज़ में वो बात भी नहीं थी, काफ़ी कमज़ोर सुनाई दे रहे थे. और कल रात जो है ये खबर सुनने को मिली कि रहीमुल्ला यूसुफ़ज़ई साहब का जो है वो इंतकाल हो गया. तो बचपन की एक इस लिहाज से तो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त एक नॉस्टैल्जिया था कि ये वो आवाज़ें थी जिनको सुनते हुए हमने शायद कहते हैं ना कि शऊर की आँख जो है वो खोली, और इस अपने आसपास के इलाके को, अपने मुल्क को जो है वो बेहतर तरीके से जाना और पहचाना हमने ऐसे लोगों की दानिश और ऐसे लोगों की सोच की वजह से. और उसके साथ साथ जो है वो ज़ाहिर है एक एक अब एक एक एक, एक नॉस्टैल्जिया के साथ साथ, एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू के साथ साथ, एक ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग कलम छोड़ कर चले गए. तो उनके लिए हम दुआ गो हैं, और मेरे ख्याल से हमारे तमाम लिसनर्स भी दुआ गो होंगे, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, आमीन सुमा आमीन. वाकई यार सही मानों में मैं, व्हेन आई लुक अराउंड द एंटायर मीडिया सीन इन पाकिस्तान, आई हार्डली फाइंड एनी वे एनी वन कि अब इस तरह के ऑब्जेक्टिव तज्जिये जो हैं वो पाकिस्तानी न्यूज मीडिया में होते हों. Alright, that was Junoon with नींद आती नहीं सारी सारी रात. And hope you guys enjoy that song. And why not? Alright, great, beautiful nostalgia with this song. And yeah, alright. फरुख शाह साहब कहते हैं ग्रेट ट्रिब्यूट फॉर रहीम अली यूसुफ़ज़ई साहब बाय यू. एंड इसके अलावा मोहम्मद नसीम थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. शाकिर अकबर साहब कहते हैं इज दिस अ कोइंसिडेंस दैट ऑल पाकिस्तानीज आर लिबरल बिलोंग टू पीपल्स पार्टी फ्यूडल कनेक्शन प्रो करप्शन प्रो इंडिया एंटी आर्मी एंटी डेवलपमेंट एंड एनीथिंग कनेक्टिंग. ओके चले ये नहीं कोइंसिडेंस नहीं है. देखिए it is about the frame of mind, it is about the philosophy that they belong to and all. But bahar challenge iske alawa Amar kehte hain have you seen the new video of Umar Sharif? Yes, I did. Kal Waseem ke show mein Umar Sharif sahab ki ek video jo hai wo play hui thi aur Umar Sharif sahab zahir hai unko bhi dekh ke kal bada afsos hua. Humne unko hamesha haste mazak karte hue logon ke sath mazak karte hue hi dekha hai aur kal unko is halat mein dekh ke kehna chahiye ke बहुत अफसोस हुआ. और वो इमरान खान साहब से अपील कर रहे थे क्योंकि वो अमेरिका जाना चाहते हैं अपना इलाज करवाने. एंड ही वाज आस्किंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ हेल्प. नाउ व्हाट हेल्प दैट इज आई डोंट नो वेदर इट्स द फाइनेंशियल हेल्प और जस्ट द फैसिलिटेशन इन हिज ट्रैवल. लेकिन बहरहाल आई होप प्राइम मिनिस्टर लिसन्स एंड डू व्हाटएवर द बेस्ट ही कैन. उमर शरीफ साहब बहुत बड़ा असासा है पाकिस्तान का. अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल अता फरमाए आमीन. ओके जी इसके अलावा फिक्शन कहते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद ईरान सडनली दिस आउटबर्स्ट अगेंस्ट पाकिस्तान. ईरान मेरे ख्याल से मैंने कल मुख्तसरन इस पे बात की थी. ईरान पाकिस्तान का सबसे इनकन्वीनियंट फ्रेंड है और एक बड़ी मुश्किल सी जो है वो ईरान के साथ पाकिस्तान की दोस्ती है. और ज़ाहिर है अफगानिस्तान से जिस तरह इंडिया का पत्ता साफ हुआ है तो ईरान भी जो है वो गेम से काफ़ी हद तक आउट हो गया स्पेशली आफ्टर दिस पंजशीर बैटल. और उसके बाद से इनका गुस्सा तो फिर बनता है. और बहरहाल मैं तो कभी कभार बड़ा हैरान होता हूँ. मुझे नहीं अंदाज़ा कि तालिबान की जो रजीम है सो वहाँ मौजूद है और जो ईरान में थियोक्रेटिक जो थियोक्रेसी ऊपर मौजूद है उसमें कोई खास डिफरेंस है या नहीं. द ओनली डिफरेंस इज़ द पर्शियन हेरिटेज एंड द पर्शियन कल्चर. इस पर खैर मैं बात कर सकता हूँ काफ़ी तवील लेकिन आई नो हमारे कुछ दोस्तों को पसंद शायद ना. आगे बढ़ते हैं जी. क्या सीन है सुमेरा से कुछ सॉन्ग्स आपको लाइफ में पीछे ले जाते हैं. एब्सोल्युटली नॉस्टैल्जिक एब्सोल्युटली मेनाज नवी थैंक यू सो मच. And yeah, let's talk about Ig Nobel Prize. Okay, ये बड़ी मजेदार we all have heard about Nobel Prize, right? Sir Alfred Nobel हुआ करते थे जिन्होंने dynamite invent किया था और उन्होंने फिर एक foundation बनाई और वो foundation जो it's an endowment fund that मुख्तलिफ fields में लोगों की तरक्की को जिसमें ज़बरदस्त contribution जो होती है medicine होता है जिसमें जिसमें केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड ऑल एंड फलाना सबसे पॉपुलर जो है नोबेल प्राइज़ फॉर पीस होता है जो कि दिए जाते हैं. सो इसका एक फ़नी वर्जन है इसका एक फ़नी वर्जन. इट्स नॉट फ्रॉम दी एल्फ्रेड नोबेल फाउंडेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है. उन्होंने सिर्फ इस नाम को यूज़ किया. दे कॉल इट द इग नोबेल प्राइज़. तो आई जी अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन गो टू दी आई जी नोबेल. आप गूगल पर जाएँ और सर्च करें इग नोबेल प्राइज़ जो है वो आप देख सकते हैं. मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ बिकॉज ये इसकी जो है ना जो इग नोबेल प्राइज़ की अनाउंसमेंट जो है वो कल की गई है और नए विनर्स जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं. और इग नोबेल प्राइज़ का जो बेसिकली बड़े मज़ेदार किस्म के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो जनरली आप इग्नोर करेंगे शायद उनके बारे में पढ़े ना. लेकिन इस अवार्ड की तकरीब जो कि आमतौर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होती है इस साल कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं हो पाई. ये तकरीब वहाँ पर होती है और इस बार जो वन ऑफ द इग नोबेल प्राइज जो प्राइजेस जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उसमें जैसे कि एक जो टॉप प्राइज दिया गया है वो नमीबिया में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कुछ वेटरनरीज हैं उन्होंने किया है कि गेंडे को मूव करने के लिए उसको उल्टा लटका के ना उसको मूव किया जाता है. सो दे हैव स्टडीड द इम्पैक्ट दैट इट हैज़ ऑन द राइनोज जब उनको उल्टा लटका के हेलीकॉप्टर के लिए के थ्रू मूव किया जाता है फ्रॉम वन सेंचुअरी टू अनदर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर उनको बेसिकली बेहोश कर दिया जाता है. तो वो देखना ये चाह रहे हैं कि ये सेडेटेड जो राइनोज होते हैं उनके हार्ट पे और उनके दिमाग पे क्या असर होता है. सो वो 10 मिनट के लिए उन्होंने 12 राइनोज को जो है वो उल्टा लटका के उन पर एक्सपेरिमेंट किया था. एंड दे एक्चुअली फाउंड आउट दैट इट हैज़ अ वेरी प्लीजिंग इफेक्ट ऑन द राइनोज. दैट मीन्स वो राइनोज जब बेदार होते हैं सो दे वो एक अच्छी फीलिंग के साथ बेदार हो रहे होते हैं. किस तरह उन्होंने पता चला ये मुझे नहीं पता. ये आपका काम है पढ़ना. लेकिन आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द लिस्ट ऑफ द विनर्स एंड इट्स एक्चुअली क्वाइट फन. लाइक कहते ये हैं कि जी मैं ये देख रहा था कि इकोनॉमिक्स का प्राइस जो है, हाँ ये बेस्ट है, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं सुबह हमारे एक सियासतदान का नाम आया था तो उस पर मुझे याद आया था, उसमें लिखा था इकोनॉमिक्स का प्राइस. ये बेसिकली पावलो ब्लावात्स्की, ये कोई फॉर्मर सोवियत स्टेट के हैं, ये उनको दिया गया है फॉर डिस्कवरिंग दैट द ओबिसिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिशियन मे बी अ गुड इंडिकेटर ऑफ द कंट्रीज करप्शन. यानी वो बेसिकली मैं इसके डिटेल्स पढ़ रहा था सुबह और उसमें बताया था कि जो करप्ट पॉलिटिशियन, उन्होंने एक हाइपोथेसिस टेस्ट की है कि जो करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं दे टेंड टू बी जनरली चबी, यानी वो थोड़े से मोटे से होते हैं, थोड़े से ओवरवेट होते हैं ना, गोलू गोलू गोल मटोल से होते हैं. अब मैं किसी सियासतदान की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है. अगर आपने इसको पाकिस्तान के साथ, ये इन्होंने कहीं किसी फॉर्मर सोवियत स्टेट वगैरह अपने मुल्क में कहीं कर लिया होगा, उन्होंने तजुर्बा इसका ईस्टर्न यूरोप में किया होगा. खबरदार जो कोई पाकिस्तान पे ये मामला लेकर आया, अच्छा नहीं होगा, बहुत नाराज हो जाऊंगा मैं. हमारे कुछ दोस्त बहुत नाराज होंगे कि ये जो गोल मटोल गुबलू गुबलू किस्म के जो बबलू से पॉलिटिशियंस होते हैं ये ज्यादा करप्ट होते हैं. तो ये इन्होंने जो है ना एक हाइपोथेसिस को टेस्ट किया, एंड दे एक्चुअली दे थिंक दैट दिस हाइपोथेसिस इज करेक्ट, इट इज दैट केस. सो उनको जो है वो इकोनॉमिक्स का इग नोबेल प्राइज मिला है. मेडिसिन का प्राइज जरा आप सुने ना जी. ऑल के जैम बुलूत एंड कॉलीग्स, ये कोई मुझे अपने वो लग रहा है, टर्किश लग रहा है, फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट सेक्शुअल ऑर्गेज्म कैन बी एज इफेक्टिव एज डीकंजेस्टेंट मेडिसिन इन इम्प्रूविंग नेजल ब्रीदिंग. नाक बंद हो तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप नाक में वो ड्रॉप डालें या फिर यू नो वॉट. ऑल राइट, सो इसके अलावा हाँ, जो इग नोबेल का पीस प्राइज गया है, it has gone for scientists for testing the hypothesis that humans evolved beards to protect themselves from punches to the faces. yani insaan ne daadhi isliye rakhni shuru ki taaki wo apne muh pe padne wale mukko se apne aap ko bacha sake. so that's the level of award these are actually fun reads. balki aap wikipedia pe jaye so they will share the entire history of all the ig nobel prizes jo ke pichle काफी सालों से, इनफैक्ट 1991 से दिए जा रहे हैं. सो यू कैन चेक आउट द डिटेल्स ऑफ ऑल द प्राइजेस एंड इट इज इट्स क्वाइट फन एक्चुअली. सो डू रीड अबाउट दैट, गो टू गूगल, राइट इग नोबेल एंड एंजॉय द रीड. ऑलराइट, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, समराइज में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, दिल की आवाज आप तक पहुंच गई. गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रोग्राम में ट्यून इन किया है. वी ऑफ कोर्स इज द लास्ट लिंक ऑफ द शो एंड द लास्ट लिंक ऑफ द लास्ट शो ऑफ द वीक. So we're there now already, guys. Friday is here. So cool. Acha ji, abhi phir zahir hai kya? So it was good to be back this week, of course, after a couple of weeks break. And yeah, absolutely. Acha ji, hamare Saad Ahmed sahab message karte hain ki Adil bhai, please confirm kare ki kya Pakistan New Zealand series mein DRS nahi hai. Haan yaar, ye ajeeb baat sunne mein aayi hai yaar, kya waqt aa gaya hai. ये this is actually true that Pakistan और New Zealand के दरमियान होने वाली सीरीज में decision review system available नहीं होगा. अब आप पूछेंगे क्यों, तो कहते ये हैं कि जी आईसीसी का रूल है दैट डिसीजन रिव्यू सिस्टम को यूज करने के लिए यू नीड सर्टिफाइड पीपल. सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुड नॉट, आई मीन ओके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता नहीं इल्जाम मुरद इल्जाम ठहराऊं मैं ना ठहराऊं मुझे इस बारे में पता नहीं है, बट दे कुड नॉट फाइंड द पीपल, वर जस्ट नॉट अवेलेबल. वो लोग अवेलेबल नहीं थे जिनको इस DRS के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. आई मीन दैट्स अ सॉर्ट ऑफ अ सरप्राइज टू मी, बट चलो मान लेते हैं यार बात. बट सैड, आई मीन DRS के बगैर क्रिकेट में अब कुछ समझ में ही नहीं आती बात. शाहरुख कहती हैं, हाय अदील, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव शहबाज गिल सेड दैट गवर्नमेंट विल टेक स्टेप फॉर उमर शरीफ्स मेडिकल ट्रीटमेंट. चलें, इफ दैट्स द केस दैट इज प्रीटी कूल. शिराजी कहते हैं, विंटर रेन, विंटर किधर, ऑस्ट्रेलिया में वही चल रहा होगा विंटर तो. अभी तो गर्मी रहनी है एक दो महीने यार. अनीक अहमद कहते हैं, EVM वर्सेस इलेक्शन कमीशन, EVM वर्सेस ऑपोजिशन, EVM वर्सेस TV एंकर्स फाइट एंटर्स द फाइनल राउंड, अंपायर्स वॉचिंग क्वाइटली एंड मैच रेफरीज ईगरली वेटिंग के कोई फाउल तो करे. ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग. और ठीक हो गया जी. तालिब अयूब साहब पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से परेशान हैं. रहने दो यार, रहने दो, छोड़ दो, ज्यादा टेंशन ना लो तालिब. ओके, ही लिसन्स टू माय शो इन ऑक्यूपाइड कश्मीर ऑफ कोर्स. तायरुल्ला खान साहब कहते हैं, रहीमुल्ला यूसुफजई के बारे में तबसरा पसंद आया, मैंने सहाफत में उन जैसा शरीफ नफ्स और रास्त गो सहाफी नहीं देखा, अल्लाह उन्हें अपनी रहमत पर रखे, आमीन. वैसे सियासतदानों के लिए किसी ओहदे को लेते वक्त उनका वजन भी किए जाना चाहिए, जो ओहदा छोड़ते वक्त दोबारा करके तफ्तीश के लिए ग्राउंड बनेगा. मेक सेंस वैसे इस रिसर्च के बाद तो. लेकिन एक एक करप्ट पॉलिटिशियन मुझे याद आ रहे हैं, वो इतने ज्यादा वैसे मोटे थे नहीं, लेकिन फिर भी चलें जी आगे. तो फिर क्या सीन है? अच्छा सीन ये है कि या वैसे चलते चलते बात करते चलते हैं जो बाइडन के हवाले से. जो बाइडन जो हैं उन्होंने कल एक काफ़ी गुस्से में एक जो है ना वो तकरीर की है. अच्छा अमेरिका का बड़ा मसला चल रहा है, अमेरिका का मसला ये चल रहा है कि वहाँ पे कोविड ने एक बार फिर से अपनी जो है ना वो अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. बड़ी तादाद में केसेस वहाँ पे एक बार फिर से सामने आ रहे हैं. नॉट एज बैड एज प्रीवियसली, जो प्रीवियस उनका रहा था इस साल के आगाज में जो सिचुएशन थी. लेकिन इतनी वैक्सीनेशन करने के बावजूद इस वक्त जो बाइडन बहुत गुस्से में हैं उन लोगों पे जो अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवा रहे हैं. और अब उन्होंने ये कर दिया है कि जी ही हैज़ रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ यूएस वर्कर्स कि वो अपने आप उनको वैक्सीन को मैंडेटरी उन्होंने कर दिया. फेडरल वर्कर्स यानी कि जो जो वफाकी हुकूमत से वाबस्ता जो इदारे उनके तो तमाम एम्प्लॉज को अब वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी. इसके अलावा उन्होंने सर्टन साइज की कंपनीज के लिए, आई थिंक मोर देन 100 एम्प्लॉज इन कंपनी के होंगे, आई थिंक उन्होंने उनके लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपको अपनी वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी. वो कहते हैं कि मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या करूँ इससे ज्यादा कि मैं फ्री वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा हूँ. इट इज इजीली अवेलेबल, पीपल कैन गेट अ बूस्टर शॉट एज वेल. लेकिन क्या वजह है कि लोग नहीं करवा रहे? बेसिकली वजह उनको भी पता और उन्होंने तकरीर में मेंशन भी किया, बहुत सारे अमेरिका में जो वैक्सीन स्केप्टिसिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज. मसलन मैं कल डेनमार्क के बारे में सुन रहा था, 72% ऑफ देयर पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड नाउ. सो उन्होंने जो आखिरी रिस्ट्रिक्शन थी वैक्सीन के हवाले से कि आपको एक वैक्सीन पास अपना प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर एंटरिंग अ पब, अ क्लब और फॉर अ फुटबॉल मैच, सो वो भी उन्होंने जो है वो कल खत्म कर दिया. सो हर कंट्री का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है वैक्सीनेशन के हवाले से. साउथ अफ्रीका का मैं कल सुन रहा था कि उनका वैक्सीनेशन अपटेक जो है वो भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है. और वहां पे साउथ अफ्रीका में बल्कि उनका फुटबॉल का मैच होने वाला है, तो अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो यू विल गेट फ्री फुटबॉल मैच टिकट. बफाना बफाना जो उनकी फुटबॉल टीम जिसको कहा जाता है उनका मैच होने वाला है. और यू कैन गो एंड वॉच फ्री फुटबॉल मैच इफ यू गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड. सो या सो बहरहाल देखते हैं अमेरिका क्या करता है इसके हवाले से. इन्होंने एक्चुअली ना रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत जल्दी खत्म कर दी थी. मई के महीने में इन्होंने हर तरह के मास्क पहनने पे जो है ना जो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी थी. सो खैर बहरहाल उसका जो है ना वो इनको हुआ है नुकसान और एक बार फिर से कोरोना ने जो है वहाँ पे मारा है कम बैक. ओके जी. इसके अलावा एस के का मैसेज आया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, लुकिंग एट द टाइमिंग आई थिंक द टारगेट ऑडियंस फॉर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन एड बीइंग डन ऑन समा एफएम इज मेनली अफगान रेफ्यूजीज पॉपुलेशन लिविंग इन पाकिस्तान. दिस कुड बी वन ऑफ द, आई मीन हमारे पाकिस्तानी भी तो ज़्यादा अटेम्प्ट मारते हैं और एफर्ट मारते हैं इलीगल जाने की. सबसे ये कहते हैं कि अफगान सिर्फ ये करते हैं सो फिर नहीं, बट यस आई थिंक ज़्यादातर आपको दुनिया में अफगान ही नज़र आ रहे होते हैं इस तरह के जो इलीगल जहाँ जहाँ माइग्रेशन होती है, बिकॉज दे हैव गॉट अ वेरी सॉलिड रीज़न. आई मीन नाउ तो दे हैव गॉट अ वेरी सॉलिड रीज़न एंड दे वुड गेट सम फेवर्स फ्रॉम द वर्ल्ड एज वेल. अनीक अहमद साहब कहते हैं यूएस कार जाइंट फोर्ड इज टू स्टॉप मेकिंग कार्स इन इंडिया एंड शट डाउन बोथ ऑफ इट्स प्लांट्स इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू कंपनी स्टेटमेंट. जी हाँ, कल मैं ये खबर पढ़ रहा था एंड आई विश आई हैड सम मोर टाइम बिकॉज कल काफ़ी तफसील से मैंने इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से पढ़ा. इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दिस इज द, आई थिंक दे आर द थर्ड प्लेयर इन रीसेंट टाइम्स जिन्होंने कहा है कि दे आर गोइंग टू स्टॉप मेकिंग व्हीकल्स इन इंडिया. इससे पहले जनरल मोटर्स जो है वो इंडियन मार्केट क्विट कर चुका है. हार्ले डेविडसन ने भी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी थी. नाउ दीज आर मैसिव ब्लोज बिकॉज इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपना एक फ्लैगशिप प्रोग्राम लेकर आए थे जिसका नाम उन्होंने मेक इन इंडिया रखा था. सो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बाय द वे वो नंबर वन, इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री. इंडिया वन ऑफ द टॉप 5 or 6 बिगेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड. But for nobody's surprise actually, Indian market is dominated by Maruti Suzuki. I think around 51 or 52% market share जो है वो Maruti के पास है. बल्कि मैं कल इंडिया की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स देख रहा था. I was just counting and I was actually again not surprised. But उन टॉप 10 में से 7 जो हैं वो Maruti की गाड़ियाँ थी, Maruti Suzuki की गाड़ियाँ थी और 3 जो थी वो उसमें Hyundai शामिल थी. तो Hyundai is number 2 there. इंडिया में एज फार एज द मार्केट शेयर. तो ये जो फोर्ड थी ये काफ़ी अर्से से कोशिश कर रहे थे कि कोई रूम बनाए लेकिन दे जस्ट कुड नॉट डू दैट. एंड नाउ 10 साल लॉस में रहने के बाद आफ्टर मेकिंग अ लॉस ऑफ अराउंड 2 बिलियन क्यूमुलेटिव डॉलर्स, क्यूमुलेटिव लॉस बनाने के बाद दे हैव डिसाइडेड टू क्विट इंडियाज मार्केट. सो हाउएवर एनीवे हैविंग सेड दैट, आई सेड इंडिया इज अ मैसिव ऑटोज मार्केट. दे मैन्युफैक्चर्ड 3.3 मिलियन कार्स इन द प्रीवियस ईयर अगेंस्ट आई थिंक हमने कोई 1.5 लाख पौने 2 लाख शायद गाड़ियां प्रोड्यूस की थी. बिकॉज इंडिया में जो ऑटो फाइनेंसिंग वाली गेम है दैट इज क्वाइट बिग, इट्स बिग देयर. पाकिस्तान में आपको पता है कि बैंक्स आर स्टिल इवन अभी रिकॉर्ड हम बना रहे हैं ऑटोमोबाइल डिस्बर्समेंट्स के, बट स्टिल दे आर रिलक्टेंट. एक सर्टेन टारगेट मार्केट कोई टारगेट कर रहे हैं. वक्त आ गया, आप लोग इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. Thank you so much, guys, and catch you on Monday. Wishing you all a wonderful weekend ahead. So till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz. And Pakistan, Zindabad.